डॉक्टर।
यस
हाँ, ये अब मैं हमारी आपकी बातचीत रिकॉर्ड हो रही है।
बिल्कुल
इसके पहले मैं आईफोन पर था, वहां रिकॉर्डिंग नहीं होती। हाँ मैम, ये जो पेशेंट है, इसका वजन कितना था
98 kg। प्रॉब्लम
और इसको प्रॉब्लम क्या थी?
थी इनका, एक प्रेगनेंसी हुई थी 3 साल पहले,
जी
जिसमें वो प्रेगनेंसी में फीटल डिस्ट्रेस हुआ था तो सीजर किया गया था, पेट में सीजर लगा के डिलीवरी हुई थी।
जी जी
और उसके फिर 2 साल के बाद फिर
जी
से एक बच्चा ठहरा था,
जी
लेकिन वो अपने आप 6 महीने में बच्चा डिलीवर कर गया था।
वो यानी
और
हाँ, यानी गर्भ गर्भ का ढहना जैसा कुछ हुआ था।
हाँ, गर्भ का 6 महीने में ही, समय से पहले
जी
गर्भ नहीं ठहर पाया था तो बच्चा डिलीवर कर गया, बट उसके दौरान जो प्लेसेंटा होता है वो
जी
बच्चेदानी में रह गया,
जी
तो
जी
उसके लिए फिर से मरीज को ब्लीडिंग हुई और वो इमरजेंसी में आई
जी
और हमने ही उनके प्लेसेंटा जो है बेहोश करके और उसको निकाला।
जी जी जी
मरीज को फिर 2 बोतल खून चढ़ा एंड फिर मरीज सही हो गई, फिर चली गई।
जी जी
और
जी
फिर उसके 1 साल बाद फिर से जब मरीज आई तो
जी
मेरे पास 3 महीने की प्रेगनेंसी लेकर आई,
जी
और उसका समस्या जो थी वो ब्लीडिंग थोड़ी बहुत होना और
जी
पेट में दर्द होना।
जी जी
तो हमने अल्ट्रासाउंड कराया
जी
और अल्ट्रासाउंड से ये पता चला कि ये जो इस बार जो बच्चा है वो
जी
पहले का जो स्कार है, सिजेरियन स्कार,
जी
उस पे चिपका हुआ है,
जी
उस पे इम्प्लांटेशन हो गई है।
जी
तो
जी
ये एक तरह का प्रॉब्लम है
जी
जिसमें बच्चा जो है गर्भ के बाकी के हिस्सों में नहीं, ये सिजेरियन स्कार जो है पहले उसके हिस्से में चिपक जाता है, प्लेसेंटा वहीं इम्प्लांट हो जाता है।
जी जी
तो इस बच्चे का फ्यूचर क्या होता है, क्योंकि वो जो एरिया है उसकी वैस्कुलरिटी कम होती है, वो पहले से थोड़ी फाइब्रोसिस रहती है क्योंकि पहले सीजर हुआ है, वो सूखा है,
जी
तो वहाँ पे जो है ब्लड की सर्कुलेशन बहुत अच्छी नहीं होती है
जी
और
जी
वो एरिया कमजोर भी होता है।
जी
तो
जी
ऐसे केस में बच्चे की ग्रोथ नहीं होती है
जी
और 3-4 महीने में बच्चा अपने आप जो है थिन एरिया होने लगता है कमजोर होने के कारण, तो वो अपने आप फट जाता है।
जी
और
जी
जैसे ही फटता है मदर को इतनी ब्लीडिंग होती है और मदर शॉक हो जाती है और बहुत बड़ी इमरजेंसी में आती है, तो फिर से पेट में चीरा लगाना और फिर पेशेंट को जो है सही करना, टाका लगाना, उसको जो नीचे में फटा हुआ है उसको सिलना, पेट में चीरा लगाकर ब्लड चढ़ाना, आईसीयू में जाना, ये सब चीजों का खतरा रह सकता है।
डॉक्टर, बच्चा तो मर जाता है ना?
हाँ, वो तो छोटा बच्चा होता है, 3 महीने का बच्चा तो बहुत ही छोटा रहता है, अभी तो
जी
जस्ट वो शुरुआत हुई है उसकी,
जी
तो
जी 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 जी
हमने इसको पहले से डायग्नोज करके, पहले
जी
ही इनको हमने पूरी बेहोशी की जांच कराकर,
जी
और क्योंकि ये बहुत ओबीज थी तो इनके पेट में चीरा लगाना भी एक बहुत बड़ा एक समस्या था, फिर पोस्ट ऑपरेटिव इंफेक्शन हो सकते थे,
डॉक्टर क्या
घाव
थी
भरने
ये?
में दिक्कत हो
डॉक्टर क्या थी
सकती थी।
ये? बहुत ओबीस, बहुत मोटी
बहुत
थी?
ओबीज थी, फैटी
मोटी
बहुत पेशेंट थी,
मोटी
98 kg की
मोटी
महिला। हाँ
जी जी
है ना, तो
जी जी
जब हमने फिर उसको काउंसलिंग की तो पेशेंट तो रेडी थे दूरबीन की जो है पद्धति से ट्रीटमेंट कराने के लिए,
जी जी
तो हमने इनका फिर जो है कंसेंट लेकर बेहोशी की पूरी जांचें करा के फिटनेस कराकर
जी जी
और दूरबीन से इनका जो है एक्चुअली बच्चेदानी इसमें जो है काफी वैस्कुलर होती है कि बच्चा रहता है अंदर,
जी जी
तो
जी
इसमें फिर आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले बच्चेदानी के जो पास जो कोशिकाएं होती हैं
जी जी
वो जो बच्चेदानी को सप्लाई करती है उनको जो है क्लैंप करना होता है, ताकि जो वेसल्स की जो फ्लो है बच्चेदानी में
जी जी
ब्लड की जो फ्लो है वो कम हो जाए।
जी
तो
जी
जब ऑपरेशन हम लोग, वो बच्चा वो उसका जहाँ पे थिन हो गया है,
जी
जब
जी
ऑपरेट करें तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा ना हो,
जी जी जी
बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है,
जी
तो
जी
पहले तो सबसे जटिल होता है क्योंकि पहला 2 बार इसका जो है ऑपरेशन हो चुका था
जी
तो
जी
बहुत ज्यादा चिपकाहट थी, तो उसको चिपकाहट को हटाना। दूसरा
जी जी
होता है कि जो उनका जो पेशाब की जो थैली है वो भी चिपक जाती है
जी जी
बच्चेदानी से, क्योंकि
जी जी
ऑपरेशन हुआ रहता है, उसको
जी
फिर नीचे हटाना और उसके
जी
बाद उस जो कमजोर एरिया है
जी
उसको फिर जो है इस पे चीरा लगा के, और जैसे ही क्योंकि इतना कमजोर होता है कि हल्का सा चीरा लगाने से ही बच्चा बाहर आ जाता है,
ओ
क्योंकि वो बच्चा वही रहता है।
जी।
तो उसके बाद उस बच्चे को पूरा जो टिश्यू निकाल कर और पूरे उनकी जो मार्जिन होती है
जी।
बच्चेदानी की जिससे हमने चीरा लगाया है उसको फिर से हमको फ्रेश करके और
जी
ऊपर और नीचे की मार्जिन को फिर हम लोग को अच्छे से टाका लगा देना होता है, ताकि अगली बार दिक्कत ना आए यदि प्रेगनेंसी आए तो। तो
डॉक्टर, एक बात ये बताएं कि ये महिला तो अभी भी मतलब बहुत ज्यादा मोटी हैं,
हाँ बिल्कुल
और क्या कहते हैं, अब चूंकि इनको बच्चा भी है तो अगर ये ठीक ठाक कायदे से मेहनत करें, खाने पीने पर नजर रखें, तो क्या अपने खुद से वजन को कम कर पाएंगी, या मुश्किल है?
क्यों नहीं कर पाएंगे, इसके लिए उनको लंबी जो है अपने ऊपर जो है ध्यान देना होगा,
जी
जो है खाद्य पदार्थ कैसे लेना है, कितना लेना है, कितना अमाउंट लेना है,
जी जी जी
डॉक्टरों से भी मिलना होगा, क्योंकि ये जो मोटापा है इसको हम लोग जो है पैथोलॉजिकल मोटापा कहते हैं।
अच्छा जी
नॉर्मल कंडीशन में किसी मरीज का 100 किलो के आसपास वेट नहीं होता है, कहीं
जी जी
ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है मरीज में, या फिर जेनेटिक लेवल पे भी कोई फैट होने की टेंडेंसी रहती है, लिपिड प्रोफाइल डिरेंज होती है, तो
जी जी
इस सब में मरीज को भी बहुत सारे खतरे हो जाते हैं,
जी
जैसे
जी
हार्ट अटैक का खतरा,
हाँ जी
तो हाँ फिर बोन हड्डियां कमजोर होना, क्योंकि
यानी
पूरा जो है प्रेशर पैरों पे पड़ता है, घुटनों पर पड़ता है।
डॉक्टर आपका ये कहना
हाँ
है, यानी सीधी साधी भाषा में कहें कि इनका मोटापा जो है वो किन्हीं ऐसी अंडरलाइन प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है जो डायग्नोज ना हुई हो, या जेनेटिक
डायग्नोज
का?
ना हुई हो या जेनेटिक कॉज भी हो सकता है। मदर
जी
का न्यूट्रिशन तो हमने बहुत अच्छे से नहीं पूछा है,
जी जी जी
लेकिन उन्होंने यही बोला कि हम शुरू से भी हेल्दी थे और बाद में और हेल्दी होते गए।
अच्छा। डॉक्टर एक अलग बात हम पर्सनली आपसे पूछना चाह रहे हैं, ये एंडो ऑक्सीफेन आप लोगों की दवा है या किस विभाग की दवा है?
क्या आप फिर से बोले?
एंडो ऑक्सीफेन जोनाल्टा जो इंटास बनाती है,
एंडो ऑक्सीजन,
एंडो ऑक्सीफेन,
स्पेलिंग बता दूं?
ENDOXIFEN, एंडो ऑक्सीफेन।
ये हमारी गायनी ऑपरेशन से संबंधित नहीं है।
अच्छा, ये हमें GS यादव ने प्रिस्क्राइब किया है और गुस्से के लिए।
ओके, वो तो साइकेट्रिक ही हो सकती हो सर।
हाँ वो साइकेट्रिक, मुझे बाइपोलर है तो मुझे गुस्सा रोकने के लिए दिया है उन्होंने, कोई कह रहा था कि यह दवा गायनी की भी है।
नहीं, ये गायनी की नहीं है, गायनी में हम लोग ये यूज नहीं करते।
अच्छा। डॉक्टर ये क्या कहते हैं, दो चार तस्वीरें क्या आप मुझे और भिजवा सकती हैं? ये जो अभी हमने आपसे बात की ना,
जी
ये इसकी ऑडियो फाइल को मैं क्या कहते हैं खबर के साथ अपलोड कर दूंगा, ताकि लोग खुद से कई बार सुन सकें।
जी धन्यवाद। तो
और ये
आप BHU से जुड़े हुए हैं, हमारे राजेश जी से जुड़े हुए हैं?
हाँ वो क्या कहते हैं PRO साहब ना।
हाँ,
हाँ।
उनके थ्रू आपने? हाँ, क्योंकि हम तो जनरली उनको भेजते हैं और
नहीं
वो
हमें
अपने सदस्य।
ये राजेश जी नहीं, ये जो चंद्रशेखर जी है ना,
हाँ,
वही सबको खबर भेजते हैं।
ओके ओके,
हाँ राजेश जी तो आपके हेड PRO हैं,
हाँ,
लेकिन
उनके
हमारा,
जूनियर।
हाँ उनके जो जूनियर है, असल में सही बताएं तो राजेश जी बैठे रहते हैं, सारा काम बेचारे वही करते हैं, ट्रांसलेशन
बिल्कुल
करना, खबर बनाना, सारा कुछ वही करते
बिल्कुल
हैं। हाँ
बिल्कुल, तो इस बार
मैं
तो हमने हिंदी में खुद
हाँ
अपने से 4 बार उसको मैं रिवाइज करके और काफी छोटा करके हमने लिखा है, ताकि उनको बहुत फिर से मेहनत ना करनी पड़े।
ये मैम एक बात ये जान लीजिए कि अगर आप मुझे अपने हाथ का लिखा हुआ अंग्रेजी में दे दिया करें,
हाँ
तो मैं उसकी हिंदी बना लूंगा, जैसे जितना कुछ आपने बोला ना।
हाँ जी
देखिए इसके लिए उस सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज की जरूरत है चीजों को समझने के लिए,
बिल्कुल
और मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूं नहीं। प्लीज
जी,
सेंटा भी मैं डिक्शनरी देखूंगा तो उसकी हिंदी मेरी समझ में आ जाएगी, गर्भनाल टाइप का जो भी होता
हाँ
होगा, लेकिन
जैसे
पूरी।
फूल कहते हैं जिसको, कहते हैं फूल कहते हैं। हाँ
अच्छा, तो पूरी कॉन्सेप्ट तो मैं समझ नहीं पाऊंगा,
हाँ
और आपने जो बोला है वो एक एक्सपर्ट की तरह से बोला है, तो ये जो ऑडियो फाइल रहेगी, लोग क्या कहते हैं जो संबंधित लोग हैं, जो स्त्रियां हैं या जो उनके केयर गिवर हैं, वो ज्यादा आसानी से समझ लेंगे। हाँ ये अगर मैं एक इंटरव्यू मैंने इनका किया था JS यादव सर का, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है साइकेट्री के, तो वो मैंने वीडियो शूट किया था, और जहां नहीं समझ में आ रहा था उसको अलग से मैं पूछता भी जा रहा था, तो क्या कहते हैं आमने सामने अगर मुझे थोड़ा सा कभी समय दें तो मैं आपके विषय को कॉमन मैन ले मैन के हिसाब से थोड़ा सा बेहतर प्रेजेंटेशन दे पाऊंगा। और आप
बिल्कुल बिल्कुल, आप कभी भी, आप जब आप फ्री हो,
जी
तो आप हमसे बात कर लें तो हम अपने मेरे जो चेम्बर है एमसीएच बिल्डिंग में तो वहाँ एक बार आ जाए, हम लोग फिर चर्चा कर लेंगे।
मैम किस बिल्डिंग में आपका चेम्बर है?
एमसीएच बिल्डिंग के फ्लोर हेड का चेम्बर है।
नहीं वो ट्रॉमा सेंटर में है या मेन वाले में?
नहीं नहीं बीएचयू के अंदर मदर एंड चाइल्ड विंग जो है।
अच्छा,
जो मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था।
अच्छा अच्छा
हाँ
अच्छा मदर एंड चाइल्ड विंग यानी वो ट्रॉमा सेंटर के मेन वाले में ही है।
ट्रॉमा सेंटर तो अलग हो गया, ये मेन वाले में ही है।
अच्छा 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 अच्छा
मेन वाला बड़ौदा के बगल में है।
अच्छा अच्छा वो तो मैं पूछ लूंगा जाके कि भाई मदर एंड चाइल्ड केयर कहाँ है, गायना कॉलेज कहाँ बैठे हो, तो लोग बता ही देंगे। ये मैम ये जो हिंदी में आया है क्या ये पहले अंग्रेजी में लिखा गया था?
नहीं नहीं हमको उन्होंने बोला आप हिंदी में ही लिख कर दो क्योंकि अखबार में सब हिंदी में ही निकालते हैं और कॉमन जो लैंग्वेज है वो हिंदी है।
हाँ।
तो लोगों को हिंदी से ही जो है जानकारी मिलेगी।
ये एक बात मतलब आप मैं बुरा मत मानिएगा, ये वाइस चांसलर की जो चमचागिरी मक्खन लगाने वाली खबरें होती है ना वो तो चंद्रशेखर जो है बैठ के अनुवाद करते हैं और जो जो जनता के मतलब जो पीपुल्स के मरीजों के लोगों के वास्तव में काम की चीजें होती है वहां कहते हैं हिंदी में लिख कर दो। अरे भाई डॉक्टर हिंदी में कैसे लिखेगा, लिख भी सकता है
वो तो आपको पता है हमने हिंदी में बहुत बार हम किसी की हेल्प भी लेते हैं।
हाँ
खुद तो लिखते ही है लेकिन बहुत सारी चीजों को ठीक भी करना पड़ता है हिंदी में।
हाँ हाँ
उसके शब्दों को फिर से हमको सटीक करना पड़ता है।
नहीं मैं यहाँ मैं आपके मतलब आपका सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। आप मुझे क्या कहते हैं अंग्रेजी में ही मेरे व्हाट्सएप पर या मेरे ईमेल पर पेस्ट कर दिया करें और हाँ मेरे लिए क्या 10-12 देखिए 80-90% गूगल बहुत बढ़िया कर देता है, 10% ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत होती है। यानी 1000-1200 शब्दों को मुझे हिंदी में कायदे से प्रेजेंटेबल ढंग से प्रस्तुत करने में 15-20 मिनट लगेंगे।
आप तो इसमें काफी एक्सपर्ट है।
आप मैं 54 साल का हूँ, 30 साल से ये काम कर रहा हूँ।
तो अगली बार से आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही भेज देंगे। हमने हिंदी इसलिए भेजा क्योंकि उन्होंने बोला हिंदी में सामान्य जनता को जो है बातें समझ में आती है और पहुंच सकती है।
आप एक काम ये कीजिएगा कि पीआरओ को भेजने से पहले आप मुझे भेज दीजिए और मुझे एक फोन कर दीजिए, मैं उसकी हिंदी बना उसकी हिंदी बना करके अपने यहाँ लगा दूंगा और वही हिंदी आपको भेज दूंगा। वो आप पीआरओ को भेज दीजिएगा, वो अपना जिसको मर्जी भेजते रहेंगे।
अच्छा अगली बार हम ऐसा ही करेंगे।
हाँ 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 वो मैम पिछली बार जब आपसे बातचीत हुई थी जो आपने बताया था ना कि मतलब बच्चा बच्चा जो है किनाल में अगर लंबे समय तक रहा तो जन्मजात बीमारियां हो सकती हैं या बच्चा मर सकता है। तो मैं इमेजिन कर रहा था कि मैं भी तो ऐसे ही बाहर आया हूँ।
बिल्कुल
देखिए एक आखिरी बात कहके अपनी बात खत्म कर रहा हूँ कि मतलब हमें बड़ा करने में, हमारी परवरिश करने में, हमको पढ़ाने लिखाने में मेरे पिता का भी रोल रहा है।
बिल्कुल।
लेकिन जब मुझे पहली सैलरी मिली थी मैम तो मैंने पिता को नहीं दिया था।
बहुत अच्छा किया।
अपनी माँ को दिया था। अपनी माँ को दिया था। और जब मैं मनी ऑर्डर भेजता था ना तो पिता के नाम नहीं, पत्नी के नाम नहीं, बेटी के नाम नहीं, माँ के नाम भेजता था।
बहुत अच्छी बात है।
वो इसलिए कि भाई माँ का रोल सबसे ज्यादा होता है।
हाँ तो सभी लोग ये समझे क्योंकि हमारे यहाँ जो डिपार्टमेंट है
जी मैम
उसको हमेशा बहुत लोगों को लगता है कि इग्नोर करें क्योंकि यहाँ पे फीमेल डिपार्टमेंट है और हम लोग इतना चैलेंजिंग केसेस करते हैं, दो दो जान के लिए हम लोग फाइट करते हैं, एक एक जो है मोमेंट पे हम लोग को देखना पड़ता है। तो इम्पोर्टेंस है सारे जो डिपार्टमेंट में, मुझे लगता है कि गायनी डिपार्टमेंट को सबको बहुत अच्छे से इम्पोर्टेंस देना चाहिए और आप लोग का भी बहुत सपोर्ट जरूरी है ताकि हम लोग डिपार्टमेंट से बहुत अच्छा कर
सकें। मैम ये जो आपने हमें हिंदी में भेजा है ये राइट नाउ अगर आप पूरा अंग्रेजी में लिखित कंटेंट हमें उपलब्ध करा दें तो वो असल में पीआरओ साहब करते क्या बता दे रहा हूँ कि वो जो ईमेल भेजते हैं ना मैम वो सारे पत्रकारों को एक कॉमन ईमेल भेजते हैं।
ओके
तो अगर आप मुझे 2-3-4 पैरा अंग्रेजी में लिख करके दे दें
उसके बारे में।
हाँ तो मैं उसको हिंदी करके रिप्लाई आल कर दूंगा और आपका भी ईमेल डाल दूंगा, इस तरह से सबके पास बढ़िया कॉपी चली जाएगी।
तो मैं अगली बार से आपको यही करती हूँ।
ठीक ठीक ठीक। और ज्यादातर मैम, ज्यादातर जो पत्रकार होते हैं ना, बेचारों को अंग्रेजी नहीं आती। ये जो हमारे जमाने में क्या था कि अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो आपको नौकरी ही नहीं मिलेगी, क्योंकि अनुवाद बहुत जरूरी था।
बिल्कुल।
अब थोड़ा सा बहुत छूट मिली है कि अंग्रेजी नहीं आती तो भी काम चल जाएगा। ठीक है मैम, आपका हमने काफी वक्त लिया, इसको मैं करके आपको लिंक भेज रहा हूँ।
धन्यवाद।
नमस्ते मैम। नमस्ते।
नमस्ते।